दादू, मुझे नहीं लगता कि आकांक्षा कभी उसे मार पाएगी। अगर मारना होता तो वो उसी दिन ही उसे मार देती जिस दिन उसने बाकी के पिशाचों को खत्म किया था। दादू, वो उसे प्या बोलते हुए त्रिशान रुक गया और उसके चेहरे पर उदासी के भाव थे। उसने अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया था, लेकिन राजपुरोहित जी से कहाँ कुछ छुपा था। उसकी अधूरी बातों का मतलब वो अच्छे से समझ चुके थे। प्यार एक इंसान को कमज़ोर नहीं बनाता, वो उसकी ताकत होता है। रेवांश को मोक्ष दिलाने के लिए आकांक्षा को अपना मोह त्यागना होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी, राजपुरोहित जी ने चिंतित स्वर में कहा। जिसे हम प्यार करते हैं उसे मारना बहुत मुश्किल होता है दादू। आप इन सब मोहमाया से दूर हैं, इसलिए आपको नहीं पता। और तुम इस मोहमाया में पड़ चुके हो। हमने तुम्हें किसी मकसद से शिमला पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन तुम भी अपनी सच्चाई को स्वीकार करना सीखो। त्रिशान, तुम चाहकर भी इससे दूर नहीं भाग सकते। तुम क्या हो ये जानने के बाद वो तुम्हें स्वीकार नहीं कर पाएगी और ये तुम्हें बहुत तकलीफ देगा, राजपुरोहित जी ने त्रिशान को समझाया। त्रिशान, आकांक्षा ने भी तो रिवांश का सच जानकर उसके सच को स्वीकार किया है। उसे भी तो पता है ना कि रिवांश एक पिशाच है, उसके बावजूद भी वो उससे प्यार करती है। यहाँ तक कि उसने उसकी जान तक नहीं ली। क्या पता मेरी किस्मत में भी। राजपुरोहित जी, उम्मीदें इंसान को और भी ज्यादा तकलीफ देती है। बाकी बातें बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए तुम्हें पता है ना कि हमें क्या करना है। त्रिशान ने हाँ में सिर हिलाया और उन्हें प्रणाम करके वहाँ से चला गया। वो वहाँ से बाहर निकला तो मंदिर के प्रांगण में संध्या आरती हो रही थी। उसने दूर से माता रानी को प्रणाम किया और वहाँ से ऊपर पहाड़ों पर बैठकर अपने पुराने दिनों को याद करने लगा। काफी साल पहले कांगड़ा के आसपास के जंगलों में हड़कंप मचा हुआ था। सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। जंगल में शिकारियों ने धावा बोल दिया था। उनके साथ में कुछ हंटर्स भी थे जिन्हें ये पता चला था कि जंगल में कुछ मायावी जानवर भी रहते हैं। साइंस के कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए वो उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जा रहे थे। इन सबके बीच झुंड में कुछ भेड़िए भाग रहे थे। भागते हुए उनमें से एक के पीछे से तीर लग गया। तीर लगते ही वो इंसानी रूप में आ गया और कराहते हुए नीचे गिर गया। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बाकी भेड़िए और तेज भाग लगे, लेकिन दो वहीं रुककर उसे संभालने लगे। वो उसके पास आकर अपने इंसानी रूप में आ गए। उनमें एक औरत और एक छोटा बच्चा था। प्लीज आज हिम्मत करके भाग लीजिए। अगर आज हम यहाँ से निकल गए तो हमारी जान बच सकती है। हमारे लिए नहीं तो प्लीज हमारे बच्चे के लिए एक बार खड़े होने की कोशिश तो कीजिए। वो औरत रोते हुए नीचे गिरे आदमी को भागने के लिए हिम्मत बढ़ा रही थी। मैं अब आगे नहीं जा सकता। मुझे नहीं लगता कि मैं अब जी पाऊंगा। ये कोई सामान्य तीर नहीं है। तुम्हें हमारी बच्चे की जान बचानी होगी, वो आदमी दर्द में टूटे फूटे शब्दों में बोल रहा था। उसने प्यार से अपने 3-4 साल के बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फिराया। अगले ही पल हंटर्स का ग्रुप उनके करीब पहुंच रहा था। तुम्हें मेरी कसम है मालती, त्रिशान को लेकर चली जाओ। आगे देवी माँ का मंदिर है, वहाँ जरूर हमें कोई शरण देगा। उस आदमी ने रोते हुए हाथ जोड़ लिए। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए वो औरत वापस भेड़िए के रूप में आ गई और साथ में वो बच्चा भी। उसका झुंड आगे जा चुका था, लेकिन जैसे ही उसे देवी माँ के मंदिर की घंटियाँ सुनाई थी वो कहीं और जाने के बजाय उस मंदिर की तरफ बढ़ गई। रात होने की वजह से गहरा सन्नाटा पसरा था। वो उस बच्चे को लेकर वहाँ पर बढ़ने ही लगी थी कि उसे भी पीछे से आकर एक तीर लग गया। जैसे तैसे वो खुद को संभालते हुए इंसान के रूप में अपने बच्चे के साथ मंदिर में पहुंची। मंदिर के प्रांगण में राजपुरोहित जी तपस्या में लीन थे। मेरी मदद कीजिए, उस औरत की चिल्लामे की आवाज के साथ राजपुरोहित जी का ध्यान टूटा और वो दौड़कर उसकी तरफ गए। मुझे तीर लगा है और मुझे नहीं लगता कि मैं जी पाऊंगी, प्लीज आप मेरे बच्चे का ख्याल रखिएगा। मालती बुरी तरह खून में सन चुकी थी और राजपुरोहित जी के सामने गिड़गिड़ा रही थी। हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे, तुम ठीक हो जाओगी, ये एक सामान्य तीर है। नहीं, ये तीर सामान्य नहीं है और हम लोग भी सामान्य नहीं है। हम लोग मायावी भेड़िए हैं और हम पर हंटर्स ने हमला बोल दिया है। मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं समझा पाऊंगी, लेकिन प्लीज मेरे बेटे का ख्याल रखिएगा। अपनी बात खत्म करने के कुछ देर बाद उस औरत ने वहीं दम तोड़ दिया। राजपुरोहित जी ने उस बच्चे की तरफ देखा जो कि इन सब बातों को समझ में नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और डर के मारे वो अपनी माँ के शरीर के पास सिकुड़कर बैठा था। राजपुरोहित जी ने उसके आंसू पोंछे और उसे गोद में उठाकर वहाँ से ले गए। उन्होंने उस औरत का क्रियाकर्म करवा दिया और उस बच्चे का बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ध्यान रखने लगे। पुरानी बातों को याद करके त्रिशान की आंखों में आंसू थे। दादू ने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। उन्होंने मुझे अपनी शक्तियों को काबू करना सिखाया, मुझे पढ़ाया लिखाया। पहली बार उन्होंने मुझसे कुछ मांगा था तो मैं उन्हें कैसे मना करता। मुझे शहर और वहाँ की आबादी से सख्त चिढ़ है, लेकिन उसके बावजूद मैंने शिमला के कॉलेज में एडमिशन लिया। मैं वहाँ एक मकसद के साथ गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ जाने के बाद, तुमसे मिलने के बाद मेरी जिंदगी इतनी बदल जाएगी। दादू ने कहा कि आकांक्षा की तरह सबका दिल इतना बड़ा नहीं होता कि वो रिवांश की सच्चाई जानने के बावजूद भी उसे स्वीकार कर रही है, उससे इतना प्यार करती है। तो क्या तुम्हारा दिल भी इतना बड़ा है? क्या तुम मेरा सच जानकर भी मुझे एक्सेप्ट कर पाओगी? जानवी, पहाड़ पर खड़े होकर त्रिशान नीचे की तरफ देखकर खुद से बातें कर रहा था। क्रमशः